نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. یہ سورہ طٰہٰ ہے، مکی سورت ہے، اور اس میں تقریباً لگ بھگ پانچ رکوع جو ہیں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے. طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اس قرآن مجید کو ریسیو کرنے کے لیے تیزی سے اپنی زبان ہلاتے تھے کہ آپ کو یاد ہو جائے، آپ سے کوئی لفظ جو ہے وہ مس نہ ہو جائے. تو سورہ قیامہ میں آپ سے کہا گیا کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ و قرآنہ. ایک تو یہ مشقت تھی، دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی دعوت دینے میں بہت ایفرٹ کرتے تھے، بہت محنت کرتے تھے، اور جب آگے سے جو رسپانس آتا تھا اس پر بھی آپ بہت دل گرفتہ رہتے تھے، اس حوالے سے بھی کہا. اور پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے تشقیٰ کا کہ بھئی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں، بلکہ آپ بامراد ہوں گے، اس دنیا میں بھی آپ کا بڑا اونچا مرتبہ ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، دنیا میں بھی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہوگی، اور آخرت تو آپ کے لیے ہے ہی بہت اونچی، بہت مرتبے والی. إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى، یہ قرآن تو مگر یہ ہے کہ یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. یہ بار بار بات آ رہی ہے کہ قرآن مجید سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کے اندر خوف ہے، جس کے اندر خدا خوفی ہے، جس کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا اندیشہ ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اتارا ہوا ہے اس ہستی کا جس نے پیدا کیا زمین کو اور آسمانوں کو، وہ آسمان جو بہت بلند ہیں. الرحمن علی العرش استوا، وہ رحمان ہے اور وہ عرش پر قائم ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، اور اس دنیا کو بنایا بھی ہے اس نے اور اس دنیا کو چلا بھی رہا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما، اسی کا ہے، اسی کے بس میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اسی کی ملک ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. وما تحت الثرى، اور زمین کی جو مٹی ہے اس کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کی ملک ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ اونچی آواز میں بات کریں، پکار کر بات کریں، تو بے شک وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو کہ جو چھپی ہوئی ہے، وہ اخفا اور اس سے بھی زیادہ مخفی ہے. یعنی وہ صرف ان چیزوں کو نہیں جانتا کہ جو انسان زبان سے باہر نکالے یا اس کا اظہار کرے، وہ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، بس وہ ایک الہ ہے، یکتا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنی، اور تمام اچھے نام، تمام اعلیٰ اوصاف اسی کے لیے ہیں. اب یہاں سے آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رودات بیان ہوئی ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور اے نبی، کہ آپ تک پہنچی موسیٰ علیہ السلام کی بات، ان کی بپتا آپ تک پہنچی. اِذْ رَأَى نَارًا، جب انہوں نے دیکھا آگ کو. فَقَالَ لِأَهْلِهِ، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا. امکسو، ذرا ٹھہرو. انی آنستو نارا، میں دیکھتا ہوں آگ. لعلی آتیکم منہا بقبسن، شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں، کوئی سلگا کے کوئی چیز. او اجدو علی النار ہدا، یا آگ کے پاس جاؤں تو مجھے راہ مل جائے، رستے کا پتہ لگ جائے. یہ اس وقت کا واقعہ جو سورہ قصص میں بھی تفصیل سے آگے آئے گا، کہ جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ مدین سے لوٹ رہے تھے، تو اس دوران یہ قصہ ہوا ان کے ساتھ، کہ وہاں پہ ظاہر بات رات تاریک تھی، رستہ بھی کچھ بھول گئے تھے، سردی بھی بہت تھی، تو انہیں کوئی شعلہ سا نظر آیا، तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ, जाके वहाँ कोई अंगारा ले आता हूँ, उससे हाथ वात भी हम ताप लें और कुछ हो सकता है मंजिल का सुराग भी मिल जाए। फलम्मा अताहा नू दिया या मूसा, तो जब वो उस आग के पास पहुँचे तो पुकार लगाई गई, ए मूसा इन्नी अना रब्बुक, बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ, फ़ख्ला नालैक, तो अपनी जूतियाँ उतार दो, इन्नका बिलवादिल मुकद्दसी तुआ, बेशक तुम पाकीज़ा जो वादी तुआ है उसमें हो, यानी जो वादी है ये पाकीज़ा है। और ज़ाहरी बात है उस आग के अलावा में अल्लाह ताला खिताब कर रहे हैं, तो उसके अदब का तकाजा ये है कि अपने जूते उतार दो। वह अनख्तरतु का फस्तमिअ लिमा युहा, और मैंने तुम्हें बदगुज़ीदा कर लिया, मैंने तुम्हें चुन लिया नबूवत के लिए, तो अब जो तुम्हारी तरफ वही की जा रही है उसको कान लगा के सुनो। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी, कि बेशक मैं ही हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, यकता इलाह हूँ, मेरे सिवा कोई इलाह नहीं है, फाबुदनी, तो बस तुम मेरी ही बंदगी करो, व अकीम सलात लिज़िक्री, और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। यानी नमाज का मफाद भी बता दिया कि मैं माबूद हूँ, मेरी बंदगी करो, और बंदगी का सबसे बड़ा इजहार जो होता है वो नमाज में होता है। और ज़ाहरी बात है नमाज उसकी कुछ फॉर्म में थोड़ी थोड़ी तब्दीली आती रही, लेकिन अल्लाह ताला की बंदगी चूँकि इंसान के अंदर रखी गई है, और हर शरीयत में ज़ाहरी बात है अल्लाह को पूजने का कोई ना कोई तरीका होता था, तो उसको नमाज कहा गया है। और नमाज का मफाद भी बता दिया कि नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, मेरे ज़िक्र को कायम रखने के लिए मेरी याद कायम करो। क्योंकि दुनिया में ज़ाहरी बात है हम किसी आदमी को अगर चाहें कि वो हमारी याददाश्त में ज़िंदा रहे तो हम उससे मिल आते हैं कभी कभी, कभी उससे ख़तो किताबत कर लेते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, या कोई मेल का एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला के लिए तो ये मुमकिन नहीं है ना कि हम अल्लाह से मिल आया करें फ़िज़िकली, या अल्लाह को ख़त लिख दिया करें। तो अल्लाह ताला को याद करने का मतलब क्या है कि अल्लाह की याद को कायम रखा जाए, यानी उसका जो ज़िक्र है उसको पकाया जाए। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक साहब ने पूछा कि अल्लाह के नबी ये जो शरीयत की बातें हैं, दीन की बातें हैं, कद कसरत अलैया, मुझ पर बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे याद नहीं रहती, तो आप मुझे कोई ऐसी बात बता दें कि उसके बाद फिर मुझे आपसे कुछ और पूछने की हाजत न रहे। तो आपने फरमाया कि ला यज़ालु लिसानुक रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी ज़बान हर वक्त अल्लाह की याद से तर रहे, हर वक्त अल्लाह को याद करो। तो नमाज भी अल्लाह की याद के लिए है, कुरान मजीद खुद अज़्ज़िक्र है। इन नसात आतियतुन, बेशक असा दुनिया का ख़ात्मा आने वाला है, करीब है, अकाद उख़फ़ीहा, मैं उसको मख़फ़ी रखना चाहता हूँ, लितुज़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा तसा, ताकि हर नफ्स जो उसने सही और जहद की है, जो उसने मेहनत की है, उसको पूरा पूरा बदला दे दिया जाए। जिस तरीके से किसी आदमी की मौत की इत्तला किसी को नहीं दी जाती, वरना तो ये हो ना कि बता दिया जाए कि ठीक है तुम 60 साल की उम्र में फ़लाँ तारीख को मरोगे, तो आदमी फिर सरकशी करता रहे, बगावत करता रहे, और मरने से कुछ दिन पहले तौबा तिल्ला करके अल्लाह के सामने रुजू कर ले। तो मौत भी अचानक आती है, और इस दुनिया की मौत, इस दुनिया की अजल भी अचानक आएगी, ताकि फिर जिसने जो अमल किया है अल्लाह उसको उसका पूरा पूरा बदला दे दे। फ़ला यसुद्दन्न कानहा मल्ला युमिनु बिहा वत्तबा हवाहु फतरदा, तो ऐ मूसा कहीं तुम्हें इससे दूर न कर दे, हटा न दे, किससे, नमाज से या उस क़यामत की खबर से। मल्ला युमिनु बिहा, जो उस पर ईमान नहीं रखता, वत्तबा हवाहु, और अपनी ख्वाहिशात के दरपे है, फतरदा, तो तुम्हें भी हलाक कर दे, तुम भी बर्बादी का शिकार हो जाओ। वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, और ऐ मूसा ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है। कौल हिया आसाया, कहा कि ये मेरी लाठी है, मेरा आसा है। अतवक्कउ अलैहा, मैं इस पर टेक भी लगाता हूँ। व अहुशु बिहा आला गनमी, और मैं इसके लिए अपनी बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ता हूँ। वली फ़ीहा मआरिब उखरा, और इसमें मेरे लिए कुछ और काम भी हैं। यानी एक तो शुरू में पूछ लिया कि देख लो कि तुम्हारे हाथ में क्या है, ताकि फिर जब इसमें एजाज़ ज़ाहिर होगा, ये अजदहा बन जाएगा, तो उनको पूरी तरह चेता हो कि भाई ये जो अजदहा बना है ये किस चीज़ की कन्वर्जन हुई है। तो कहा कि देख लो तुम्हारे हाथ में क्या है, तो कहा कि मैं इससे टेक लगाता हूँ, और जो है उसमें पत्ते भी झाड़ता हूँ, और दूसरे काम भी हैं। अब ज़ाहिर बात है साफ़ लगता है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने तूल दिया अपनी बात को, यानी बात ज़ाहिर बात है लाठी का बुनियादी काम तो सहारा लेना होता है ना, बात वहाँ मुकम्मल हो सकती थी, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला से गुफ्तगू हो रही थी उसकी अपनी एक लज्जत है तो उन्होंने अपनी बात को लंबा किया। और हमेशा इस जगह पर जाके वो लतीफ़ा मुझे याद आ जाता है, वो मौली साहब जो है वो बयान कर रहे थे ना ये आयत पंजाबी में कि जी वो पूछा कि जी क्या है तुम्हारे हाथ में, तो कहा जी मेरी डांग है, तो कहा कि क्या करते हो, जी मैं पत्ते वत्ते झाड़ता हूँ और टेक भी लगाता हूँ और भी कुछ काम है। तो वो किसी ने पूछा मौली साहब कि और क्या काम है, तो कहा कि हाँ तो कोई वहाबी मिल जाए तो उन्हें ठोक भी देना। उससे ये साबित हुआ कि उनके ज़माने में भी वहाबी हुआ करते थे। काल अलकिहा या मूसा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मूसा इसको डाल दो नीचे। फ़अलकाहा, तो उन्होंने उसको ज़मीन पर डाल दिया। फ़ैज़ा या हय्यतुन तसा, तो वो हो गया अजदहा भागता हुआ, दौड़ता हुआ अजदहा हो गया। काल खुज़हा वला तखफ़, तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसको पकड़ लो और अंदेशा नाक मत हो, डरो मत। सनुईदुहा सीरतहल उला, हम अभी इसको फेर देंगे इसकी पहली हालत पर, दोबारा से इसको असा बना देंगे। वज़्मुम यदक इला जनाहिका, और अपने अपने हाथ को अपने बगल में जो है वो डाल दो। तखरुज बैज़ा मिन गैरि सूइन, तो वो निकल आएगा सफ़ेद बगैर किसी ऐब के, बीमारी के। यानी बाजू का सफ़ेदी जो होती है वो बरस की वजह से भी होती है, तो कहा कि बाजू को पहलू में डालो, निकालोगे तो चमकता हुआ हो जाएगा। आयतन उखरा, ये एक और निशानी है। लिनुरिया कमिन आयातिन अल-कुबरा, ताकि हम तुम्हें दिखाएं अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तगा, जाओ फ़िरऔन के पास कि वो सरकशी पे आमादा है। क़ाला, सैयदना मूसा ने दुआ की। रब्बिशरहली सदरी, ए रब तू खोल दे, कुशादा कर दे मेरे सीने को। वयस्सिरली अमरी, और तू आसान कर दे मेरे लिए मेरे काम को। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और खोल दे मेरी ज़बान की गिरह को। यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात समझ लें। यानी जो भी कम्युनिकेशन होती है उसका हासिल यही होता है कि यफ़क़हू क़ौली, कि वो मेरी बात समझ लें। यानी आप आसमान के तारे तोड़ के ले आएँ और ज़मीन आसमान के दलाइल दे दें, लेकिन मुखातब अगर बात समझे ही ना तो ज़ाहरी बात है कम्युनिकेशन नाकिस है। तो कहा कि उसका मफाद क्या है इस सब का, कि वो मेरी बात समझ लें और जान लें। आमतौर पर यह बात मशहूर है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उनकी ज़बान में लुकनत थी, और उसके पीछे भी एक किस्सा है कि शायद आजमाइश के लिए शुरू में जो है फ़िरौन ने उनके सामने दो चीज़ें रखी, शायद कोई एक अंगारा था और एक कोई हीरा था, कि देखें किस चीज़ का इंतखाब करता है। तो उन्होंने अंगारा उठा के जो है वो अपनी जो है ज़बान पर रख लिया, जिससे उनकी ज़बान में लुकनत आ गई। लेकिन ये बात ठीक मालूम नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला के जो अंबिया होते हैं उनके बारे में हमारा ये अकीदा है कि उनको बहुत सी चीज़ें हासिल होती हैं, उसमें एक वजाहत भी होती है। अंबिया दुनियावी तौर पर भी जो अयूब होते हैं, जो खराबियाँ होती हैं, उससे पाक होते हैं। तो ठीक, बस उन्होंने ये कहा था कि मेरे अंदर फसाहत नहीं है, वो आगे आएगा कि मेरे भाई हारून को मेरा भाई बना दें। हुआ अफसहु मिन्नी लिसानन, उसकी ज़बान में फसाहत ज़्यादा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उकदतुम मिन लिसान का मतलब ये है कि लुकनत है फिज़िकल और उस लुकनत को ख़त्म कर दें, बस ये है कि मैं बहुत फसीहुल लिसान नहीं हूँ, तो मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि मैं बात अपनी पूरी तरह वाज़े कर सकूँ। वजअली वज़ीरन मिन अहली, और मेरे घर वालों में से मेरा काम बटाने वाला मुकर्रर कर दें। वज़ीर, जिस तरह बादशाह के वज़ीर होते हैं, और वज़ीर का लफ्ज़ विज़र से है, विज़र कहते हैं बोझ को, तो वज़ीर भी कौन होता है जो बादशाह का कुछ बोझ बांट लेता है। तो कहा कि मेरे घर वालों में से मेरे साथ एक लगा दीजिए साथी, हारून अखी, मेरा भाई हारून है उसको बना दीजिए। आमतौर पर कहा जाता है कि दुनिया में किसी शख्स ने यानी किसी के लिए इतनी बड़ी शिफात नहीं की होगी इस तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े भाई हारून के लिए की, कि गोया उनको भी नबूवत दिलवा दी कि भाई मेरे भाई को जो है मेरे साथ जो है मेरा साथी बना दें। और 3 साल बड़े थे सैयदना हारून सैयदना मूसा से, लेकिन मर्तबे के लिहाज से सैयदना मूसा बदतर थे और सैयदना हारून उनके ताबे थे। उशदुद भी अजरी, और उनके ज़रिए मेरी कमर मजबूत कीजिए, मेरी कुव्वत मजबूत कीजिए। व अशरिक खुफी अमरी, और मेरे साथ मेरे मामले में उनको शरीक कर दें। कई नुसब्बिहा का कसीरा व नस्कुरा कसीरा, ताकि हम खूब तेरी तस्बीह करें और खूब तेरा जिक्र करें। इन्नका कुंत बिना बसीरा, बेशक तू हमें खूब देखता है। काल कद ऊती तसुलका या मूसा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मूसा, जो तुम्हारी तलब थी, जो तुम्हारी मांग थी, तुम्हें दे दी गई। जो कुछ तुमने मांगा, शरह सदर मांगा, दे दिया। चाहा कि ज़बान की गिरा खोल दो, हमने खोल दी। और तुम्हारे भाई को भी तुम्हारा जो है वो साथ जो है वज़ीर बना दिया। वलकद मनन्ना अलैक मर्रतन उखरा, अब गोया अल्लाह ताला पुराने कुछ एहसानात गिनवा रहे हैं, और हमने तुम पर इससे पहले भी एक बड़ा एहसान किया था। इस अवहैना इला उम्मी का मायूहा, अब ये वाक्या वो है कि जब फिरौन को बताया गया कि भाई एक बच्चा पैदा होगा और जो तुम्हारी सल्तनत को उल्टा देगा, तो उसने हुक्म दे दिया था कि भाई जो भी मेल बच्चा पैदा हो ना उसको मार दिया जाए, उसको पकड़ लिया जाए और मार दिया जाए। अब उसकी तरफ इशारा है, इस अवहैना इला उम्मी का मायूहा, जब हमने हुक्म भेजा तुम्हारी वालदा की तरफ, जो हुक्म भेजा जो हम आगे बताते हैं, क्या हुक्म भेजा, अनिकजिफी ही फिर ताबूत, के इनको डाल दो एक ताबूत में, संदूक में, फ़क्ज़िफी ही फिल यम, और फिर संदूक को डाल दो दरिया में, फल युल की हिल यम बिसाहिल, और फिर ये दरिया उसको किसी साहिल पे जो है वो डाल देगा, या खुज़ अदुवुल्ली व अदुवुल्लाह, उसको उठा लेगा वो जो मेरा भी दुश्मन है और इसका भी दुश्मन है, यानी फिरौन जो अल्लाह का भी दुश्मन है और आगे जाके सैयदना मूसा का भी दुश्मन बनने वाला था। वो अलकई तो आलई का महब्बतम मिन्नी वली तुस्ना आला आईनी, और मैंने तुम पर अपनी तरफ से एक मोहब्बत डाल दी, यानी एक ऐसा मोहनापन अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा को अता किया था, अपनी मोहब्बत का ऐसा परतव उनको दिया था कि जो देखता था गोया उन पर आशिक हो जाता था। तो और इसी वजह से ज़ाहरी बात है कि वो फिरौन की जो बीवी थी, वो फिरौन जो है वो उसको मार नहीं सके, उनको मार नहीं सके और उनको अपना घर में रख लिया। वली तुस्ना आला आईनी, ताकि तुम मेरी निगाहों के सामने परवरिश पाओ। इस तमशी उख्तु का, जब चलने लगी तुम्हारी बहन, फतकूल हल अदुल्लुकुम, और ये आगे आएगा कि उन्होंने जाहिर बात है अल्लाह के हुक्म पर ये कर दिया, संदूक में डाल दिया, लेकिन उनकी बहन को या अपनी बेटी को उनकी वालदा ने कहा कि भाई तुम साथ साथ चुपके से नज़र बचा के चलते जाना और देखना कि ये संदूक कहाँ जाता है। तो वहाँ पर बादशाह के महल में गया और वहाँ से उठा लिया गया। अब वहाँ आगे की बात हो रही है कि जब चलने लगी तुम्हारी बहन, फतकूल हल अदुल्लुकुम आला मैं यकफुलू, और उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई न करूं जो इसकी किफ़ालत करे, जो इसको पाले। यानी किस्सा ये हुआ कि वहाँ पर उठा लिया गया और जो है कहा गया ठीक है कि इसको हम यहीं पर रखते हैं, मारते नहीं हैं। और फिर जो ज़ाहिर बात है शीर खार थे, तो दाइयाँ बुलाई गईं जो इनको दूध पिलाएं, लेकिन किसी का दूध उन्होंने कबूल नहीं किया। तो उस मौके पर ये उनकी बहन दाखिल हुई और उसने कहा कि मैं बताती हूँ, एक खातून है जो इसकी अच्छी दाईगिरी करेगी और इनको संभाल लेगी। फरजाना का इला उम्मिक, तो हमने लौटा दिया तुम्हें तुम्हारी माँ की तरफ, यानी फिर वो जाके अपनी माँ को बुला लाई। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है ना, अल्लाह की हिकमत है कि फिरौन के महल में ही परवरिश हो रही है और उनकी अपनी वालिदा जो हैं वो उनकी परवरिश कर रही हैं। कई तकर आइनुहा वला तहजन, ताकि उनकी आँखें ठंडी रहें और वो गम ना खाएँ। यानी अल्लाह ताला को भी आप देखिए ना, जो ममता की मोहब्बत है उसका कितना पास है कि उनकी वालिदा को वहाँ पहुँचा दिया और उन्हीं का दूध वो पी रहे हैं। वक़तलत नफसन, और तुमने एक आदमी को भी मार दिया था, उसका आगे तस्करा होगा। फनत जैना का मिनल गम्मी, तो हमने तुम्हें उस कर्ब से निजात दी। व फतन्ना का फतूना, और हमने तुम्हें तरह तरह से जांचा है, तुम्हारी आजमाइश की है। फलबिस्त सिनी नफ़ी अहली मदियन, और फिर तुम बहुत बरस 8 या 10 साल मदियन में, मदियन वालों में रहकर आए। सुम मजी ताला कदरी या मूसा, और जो अब तुम यहाँ मूसा आए हो तो एक अंदाज़े से आए हो, तयशुदा वक्त के मुताबिक आए हो। अल्लाह की अपनी एक तकवीम है, कोई चीज़ है फेजर्ड नहीं होती, ये सब हमारी तकवीम का हिस्सा है, हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। तो अब जो तुम हमारे पास आए हो, एक ख़ास वक्त तुम पर आया है, अब हम तुम्हें सरफराज कर रहे हैं। वस्तनातुक लिनफ्सी, और मैंने तुम्हें ख़ास अपने लिए बना लिया है, मैंने अपने लिए ख़ास कर लिया है, अपने वास्ते तुम्हें मुकर्रर कर दिया है। इज़हब अंत व अखू का भी आयाती वला तनिया फ़ी ज़िक्री, जाओ तुम और तुम्हारा भाई मेरी निशानियाँ लेकर, और देखो तुम दोनों मेरी याद में सुस्ती न करना। यानी दीन के जो भी दाई हैं, अल्लाह के जो भी पैगंबर हैं, उनकी सबसे बड़ी ज़ाद राह क्या है, वो अल्लाह की याद है। अल्लाह के दीन की दावत कोई बाज़ार का सौदा नहीं होती, इसके लिए तो इंसान तभी आमादा होता है जब अल्लाह से उसका ताल्लुक मजबूत हो। इज़हबा इला फ़िरऔना इन्नहु तगा, तुम दोनों जाओ फ़िरौन के पास, वो सरकशी पर आमादा है। फ़कूला लहू कौलन लय्यिना, तो तुम दोनों जाकर उससे नरम बात करना, नरमी से उससे कलाम करना। लअल्लहू यतज़क्करु अव यख्शा, शायद कि वो नसीहत हासिल करे या डर जाए। तो ये भी एक बहुत अहम है उसूल है दावत का, कि नरमी से बात की जाए, तुंदी से, सख्ती से बात ना की जाए। अब ये एक वाक्य है, उसके करेक्टर्स में नाम मुझे याद नहीं है। एक बड़ा हमारे खुलफा में से कोई खलीफा था और कोई एक बड़े आलिम थे, वो गए उसके पास और उनको काफ़ी जजद की, मलामत किया, सख्ती से बात की, डांटना शुरू कर दिया। तो खलीफा ने रोक दिया और कहा कि देखो बात यह है कि न मैं फिरौन से बड़ा मुफसिद हूँ, ना तुम कोई मूसा से बड़े मुसले हो। तो सैयदना मूसा को तो अल्लाह ने ये कहा था कि फिरौन से जाकर जब बात करना तो नरम बात करना। तो तवज्जो दिलाई कि भाई ज़ाहिरी बात है कि इतने बड़े सरकश, जिसने कहा कि अना रब्बुकुमुल आला, उसके बारे में भी ये कहा गया कि उससे बात करना तो नरमी से बात करना। काला रब्बना इन्नना नखाफ अन यफ्रुत अलैना औ अन यतगा। उन दोनों ने कहा, ए रब हमारे, बेशक हमें इसका अंदेशा है कि वो हम पर ज्यादती करेगा या हम पर सरकशी करेगा, जोश में आएगा। और आगे एक और जगह कहा ना कि हमने तो उनका एक आदमी भी मारा हुआ है, इस वजह से भी हमें डर है। काला ला तखाफा इन्ननी माकुमा अस्मऊआरा। तो कहा कि नहीं, तुम दोनों अंदेशा नाक ना हो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ। ये अल्लाह की मैयत खसूसी है। जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया था जब आगे समुंदर था, उस वक्त भी ये कहा था कि अल्लाह साथ है मेरे। या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। फ़तियाहु फ़कूला इन्ना रसूला रब्बिक। तो तुम दोनों जाओ उसके पास और उससे कहो कि बेशक हम दोनों तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं। फ़असिल माना बनी इसराइल वला तुअज़्ज़िब हूँ, और बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो और उनको अज़ाब न दो, उनको जाने दो ताकि एक आज़ाद सरज़मीन में आज़ादी से अल्लाह की बंदगी कर सकें। कद ना कभी आयत में रब्बिक, बेशक हम तुम्हारे पास अपने रब की निशानी लेकर आए हैं। वस्सलामु अला मन तबाल हुदा, और सलामती है उस शख्स पर जो हिदायत की पैरवी करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब जो है वो दूसरे बादशाहों को या हुक्मरानों को ख़त लिखते थे तो वहाँ इसी तरह मुखातब करते थे कि अस्सलामु अला मन तबाल हुदा, कि सलामती है उस शख्स पर जो हिदायत की पैरवी करे। इन्ना कद ऊहिया इलैना अन्नल अज़ाबा अला मन कज़्ज़बा वतवल्ला, बेशक हमारे तरफ ये वही की गई है कि जो शख्स झुटलाएगा और मुँह फेरेगा उसके लिए अज़ाब है, अल्लाह उसको पकड़ेगा। क़ाल फ़मर रब्बुकुमा या मूसा, वो गए जाके फ़िरौन के सामने दावत दी, तो अब फ़िरौन ने उनसे कहा, दोनों से कहा कि तुम दोनों का रब कौन है, उसका कुछ तआरुफ़ तो कराओ। قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, कहा कि हमारा रब तो वो है जिसने हर चीज़ को उसकी सूरत अता की, हर चीज़ को तख्लीक किया, उसको पैदा किया, फिर उसको राह सुझाई। यानी इन्ना जो कहा ना कि हमने इंसानों को पैदा किया है और हम ही उसको हिदायत देंगे। قال فما بال القرون الاولى, तो अब फिरौन ने बड़ा एक वार किया और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन किया। उसने कहा कि ये बताओ कि पुराने लोगों का क्या बनेगा, पुरानी जमातों का क्या बनेगा। अब ये एक ऐसा सवाल था कि इसका कोई भी जवाब सैयदना मूसा देते तो फंस जाते। अगर तो ये कहते कि भाई वो तो चूँकि मुशरिक थे तो जहन्नुमी हैं, तो फिरौन को मौका मिल जाता, वो असबियत जगा देता अपनी कौम को। और अगर कह देते कि नहीं नहीं वो तो उनको तो माफ़ कर देगा अल्लाह, तो फिर वो कहेगा भाई अगर उनको माफ़ कर देता तो हमें भी माफ़ कर देता। तो अब इस तरह का सवाल किया जो बहुत मुश्किल सवाल था। फ़मा बादुल क़ुरून अल-ऊला, सैयदना मूसा ने कहा, काल इल्मुहा इंद रब्बी फ़ी किताब, कहा कि उनका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में, वो रब खूब जानता है। किस तरीके से आप देखिए खूबसूरती से उस बात को टाल दिया। ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, बेशक मेरा रब ना तो बहकता है और ना भूलता है। यानी ये ऐसे ही है जिस तरह आजकल गुफ्तगू करते करते एकदम जैसे माइक आपके सामने रख कर एक सवाल इस तरह का कर दिया जाए। और हमारे यहाँ भी बदकिस्मती है कि लोगों को टीवी पे आने का इतना शौक़ है और हर सवाल का जवाब देने का इतना शौक़ है कि उल्टा पुल्टा हर चीज़ का जवाब वो देना शुरू कर देते हैं। तो हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, बाज़ूकात ये ज़रूरी होता है कि आप उस सवाल को ठीक करवाएं कि तुम्हारा सवाल ठीक नहीं। तो यहाँ कितनी खूबसूरती से उन्होंने उसको टाल दिया, कहा कि नहीं वो उसका इल्म अल्लाह के पास है। ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, और मेरा रब ना तो बहकता है और ना भूलता है। वो कौन है? अल्लज़ी जअलकुमुल अर्दा महदं वसलका लकुम फीहा सुबुला, वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रस्ते निकाले। वअंज़ल मिनस समाई माअन, और उसने आसमान से पानी उतारा। फ़अख़रजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, और फिर उसने उस पानी के ज़रिए ज़मीन से हर तरह की मुख्तलिफ़ किस्मों की सब्ज़ी निकाली। कुलू वराउ अनआमकुम, इसको तुम भी खाओ और अपने चौपायों को भी खिलाओ। इन नफ़ीज़ालिक लआयातिल लिउलिन्नुहा, बेशक इसमें निशानियाँ हैं अक्लमंदों के लिए, होशमंदों के लिए। मिनहा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम वमिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, कहा कि इसी ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी में हम तुम्हें लौटा देंगे और इसी से तुम्हें एक दूसरी मरतबा हम उठा खड़ा करेंगे। तो आमतौर पर जो रिवायत मशहूर है, ये तो सही रिवायत में है कि जब कोई तदफीन हो जाए तो दोनों मुठियाँ लेके तीन मरतबा कब्र में फेंकी जाए, लेकिन वो रिवायत कमज़ोर है अगरचे हमारे यहाँ मामूल है कि जब कोई आदमी जिसको दफन किया जाता है तो तीन मुठियाँ भर के फेंकी जाती हैं कब्र में, और हर एक के साथ ही कहा मिनहा खलकनाकुम, एक मुट्ठी फेंकी, व फ़ीहा नुईदुकुम, दूसरी मुट्ठी फेंकी, व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। वलकद अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़ब वअबा, اور ہم نے فرعون کو ہر طرح کی نشانیاں اپنی دکھا دیں، لیکن اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ تم ہمارے پاس آ گئے ہو کہ اپنے جادو کے زور پر ہمیں ہماری سرزمین سے بے دخل کر دو۔ فلنأتینک بسحر مثلہ، تو ہم تمہارے جادو کے مقابلے میں ایسا ہی جادو لے آئیں گے۔ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلف نحن ولا انت مکانا سوا، کہ پھر ایک ہمارے اور اپنے لیے ایک وعدے کی جگہ مقرر کر لو، ایک مقام مقرر کر لو، وقت طے کر لو، جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں گے نہ تم کرو، اور ایک صاف میدان میں سب لوگوں کے سامنے پھر مقابلہ ہو جائے۔ قال موعدکم یوم الزینتی، تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر جو وعدے کا وقت ہے، جو مقابلہ ہوگا، وہ جشن کا دن ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں اور احقاق کے حق اور ابطال باطل ہو جائے۔ وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى، اور جس میں لوگ جو ہے وہ دن چڑھتے ہی جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى، تو فرعون پیچھے واپس پھرا اور اس نے اپنے سارے مکر جمع کیے اور پھر وہ آیا۔ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اب جو ہے جادوگروں کو بلا لیا، اب ان سے خطاب کیا، ایک آخری خطاب کیا، دعوت دی دوبارہ ان سے، تو کہا کہ سیدنا موسیٰ نے ان سے کہا تمہاری بربادی ہو، دیکھو اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَاب، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کر دے کسی عذاب سے، وقت خواب من افترا، اور جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، شرک کیا، وہ ہمیشہ نامراد ہوا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى، اب اس موقع پہ کھڑے ہو کے جو انہوں نے دعوت دی، تو فرعون اس کے درباریوں میں اور جادوگروں میں بھی کھلبلی سی مچ گئی، اور ایک دم لگا کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ دعوت مؤثر ہو رہی ہے، تو آپس میں جھگڑا ان کا ہو گیا، اور پھر انہوں نے چھپ کے جو ہے ایک آپس میں سرگوشی کی، مشورہ کیا۔ قالو، اب انہوں نے کہا، ان ہذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اب کچھ لوگ کھڑے ہوئے لیڈر، انہوں نے قوم سے خطاب کر کے کہا کہ یہ دو جادوگر ہیں، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تم سب لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال دیں اپنی جادو کے زور پر، بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور لے جائیں، دور کر دیں تمہارے اچھے چلن کو، تمہاری اچھی جو سویلائزیشن ہے، جو مثالی کلچر ہے، اس کو غارت کر دیں، تو یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا کی جو ریت ہے اس کو ختم کر دیں۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی طرح کی گفتگویں جو ہے مغرب کے لیڈروں نے، ٹونی بلیئر نے اور بش نے، اس وقت کرنی شروع کی تھی جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، اور یہی دہائی دی گئی تھی کہ اس وقت جو چیز ایٹ اسٹیک ہے نا، وہ صرف امریکہ نہیں ہے، وہ پوری ویسٹرن سویلائزیشن ایٹ اسٹیک ہے، اور اس وقت اگر ہم نے ان کو بری طرح، جو مسلم فنڈامنٹلسٹ ہیں، بری طرح ان کو کچلا نہیں، تو یہ تو ہماری وہ روشن تہذیب ہے جو ہم نے 300 برس میں جا کے ہم نے ایک امپائر قائم کی ہے، اس سب کو غارت کر دیں گے۔ تو وہی دہائی جو ہے انہوں نے بھی دی تھی۔ فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا، تو کہا کہ بھائی تم سب جو ہے وہ جمع کر لو اپنی تدبیر کو، ثم اتوا صفا، اور اب آؤ صفے باندھے ان کے مقابلے میں۔ وقد افلح الیوم من استعلا، اور آج کے دن جو غالب رہا وہی کامیاب ہو گیا، وہی جیت گیا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیہ و اما ان نکون اول من القی، اب جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ پہلے تم ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے؟ قال بل القوا، سیدنا موسیٰ نے کہا کہ نہیں، پہلے تم اپنے داؤ چلو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سَيْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، تو کیا ہوا کہ ان کی جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، لوگوں کو ایسے تخیل ہوا، لوگوں کو ایسے خیال ہوا ان کی جادو کی وجہ سے کہ وہ چل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں۔ یعنی جادو جو ہوتا ہے، جادو میں تحول نہیں ہو سکتا، یعنی جو جادو ہوتا ہے اس میں کوئی چیز، اس کا میٹامورفسز نہیں ہو سکتا، اس کی ماہیت نہیں بدل سکتی، بس نظر بندی ہو جاتی ہے اور آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ان کو ایسا لگا، ان کو تخیل ایسے ہوا کہ جیسے وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں وہ جو ہے ہل رہی ہیں سانپوں کی طرح۔ فاؤ جیسا فی نفری خیفتم موسیٰ، تو سیدنا موسیٰ نے بھی اپنے جی میں کچھ خوف محسوس کیا۔ خوف کیا تھا؟ کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہمارے مخاطبین ہیں، چونکہ میرے پاس جو چیز ہے وہ بھی ایسی ہی ہے، اگرچہ جادو نہیں لیکن اس سے ملتی جلتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس کو سمجھے کہ یہ بھی جادو کی قبیل سے ہے۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا کہ ڈرو مت، انک انت الاعلی، تم بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ والکی ما فی یمینی کا تلقف ما صنعوا، اور جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دو، جو انہوں نے جو ہے ایک سحر قائم کیا ہے اور فضول چیز بنائی ہے، وہ اس سب کو نگل لے گی، یعنی ان کا جو فریب ہے یہ لاٹھی ان سب کو نگل لے گی۔ ان نما صنعوا کید ساحر، بے شک ان کا جو بنایا ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ تو جادوگر کا فریب ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور جادوگر کبھی بھی فلاح یافتہ نہیں ہوتا جب कहीं से आ जाए, जब भी आ जाए, ना दुनिया में कामयाब होगा ना आखिरत में कामयाब होगा। जिससे हमने कहा था कि जादू जो है वो कबीरा गुनाहों में से भी बड़ा गुनाह है, और अल्लाह के नबी ने तो हुक्म दिया है कि जो जादूगर हो और फितने फैलाए उसको कत्ल कर दो। फ़ाउल्किया सहरत सुजदन, तो गिरा दिया गया उन जादूगरों को सजदे में, यानी जैसे एकदम जैसे वो बिल्कुल रिफ्लेक्सिवली सजदे में गिर गए। क़ालू आमन्ना बिरब्बी हारून और मूसा, और उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। ज़ाहिर बात है उनसे बढ़ के जादू को कौन जानता होगा, तो उनको मालूम होगा कि नहीं ये जादू नहीं है, ये जादू के अलावा कोई और चीज़ है। जिस तरीके से मुशरिकीन अरब जो उनके बड़े शायर थे, खतीब थे, वो देखते ही पहचान गए थे कि ये कुरान जो है खिताबत नहीं है, ये शेर नहीं है, ये कोई और ही चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ये और नौ की चीज़ है। क़ाल आमन्तुम लहू क़ब्ल अन आज़ना लकुम, तो अब जैसे फ़िरऔन ने उनसे कहा कि तुम मेरी इजाज़त से पहले ही इस पर ईमान ले आए हो। इन्नहू लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस सिहर, और ये तो लगता है कि तुम्हारा वो बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है, तुम्हारा गुरु है, और ये जो कुछ हो रहा था ये कोई नूरा कुश्ती थी जो हो रही थी। फलौकत्यन्न अईदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन, तो मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट दूंगा, यानी दायां हाथ और बायां पांव और बायां हाथ और दायां पांव। वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइ नख़्ल, और मैं तुम्हें खजूर के तनों पर सूली दे दूंगा। वला तालमुन्न अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबका, और फिर तुम जान लोगे कि किसका अज़ाब ज़्यादा सख्त है और देर तक रहने वाला है। क़ालू, अब जादूगरों ने कहा, लन नुसिरक अला मा जाअना मिनल बय्यिनाति वल्लज़ी फ़तरना, कहा कि ए फिरौन हम तुम्हें तरजीह नहीं देंगे, हम तुम्हारी बात को आगे नहीं रखेंगे उस पर जो हमारे पास वादे निशानियां लेकर आया है और उस अल्लाह पर जिसने हमें पैदा किया है। अब देखिए ये ईमान है कि अभी आए हैं और पहले आकर जो है पूछ रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा, और जैसे ही हक वाजे हुआ है फौरी तौर पर एतराफ़ कर रहे हैं। फ़क़्री मा अंतकाज, जो तुमने करना है कर लो। इन नमा तक़्री हाज़िहिल हयात दुनिया, तुम जो भी फैसला करोगे वो दुनिया की ज़िंदगी से मुताल्लिक होगा ना, आखिरी फैसला क्या होगा कि तुम हमारी जान ले लोगे, तो बस ठीक है दुनिया में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, हम तो ईमान लाए अपने रब पर। लियग़फिर लना ख़ताया, ताकि जो हमसे ख़ताएँ कोताहियाँ पहले होती रही हैं वो हमें बख्श दे। वमा अकरहतना अलैहि मिन सिहर, और जो तुमने हमसे ज़बरदस्ती ये जादू करवाया। लगता है ना कि शुरू में जब सैयदना मूसा ने गुफ्तगू की थी तो ये भी समझ गए थे, ये भी रजिस्ट कर रहे थे कि नहीं नहीं ये तो लग रहा है कि हक पर है, हम इनका मुकाबला नहीं करेंगे। उस वक्त जैसे धौंस से फिरौन ने उनसे कहा कि नहीं नहीं आओ मुकाबला करो। वल्लाहु खैरुन वअबका, और अल्लाह बहुत बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाला भी है। इन्नहु मय्यति रब्बहु मुजरिमन, कि जो कोई भी उस अपने रब के पास हाजिर हुआ इस हाल में कि उसने जुर्म किया होगा, फ़इन्न लहू जहन्नम, तो उसका उसके लिए जहन्नम है। ला यमूतु फीहा वला यहया, ना वहाँ जिएगा और ना मरेगा, उसके लिए ऐसी ज़िंदगी है कि ना मर सकेगा ना जी सकेगा। वमन यअतीही मुमिनन कद आमिल सालिहात, और जो अल्लाह के पास पहुँचा हालत ईमान में और उसने नेक आमाल भी किए होंगे, फ़ाउलाइक लहुमुद दरजातुल उला, तो यही लोग हैं जिनके लिए ऊँचे मर्तबे हैं। जन्नातु अदनिन, रहने वाले बागात हैं। तजरी मिन तहतिहल अनहार, इनके दामन में बहती होंगी नदियाँ। खालिदीन फ़ीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वज़ालिका जज़ाउमन तज़क्का, और ये बदला है उसका जिसने अपने आप को पाक कर लिया, जिसने अपने नफ्स का तस्किया कर लिया। वलकद औहैना इला मूसा अन असरि बिइबादी, और हमने वही किया मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि निकल के निकाल ले जाओ मेरे बंदों को। फ़ज़रिब लहुम तरीकन फ़िल बहरि यबसा, और फिर उनको डाल दे समुंदर में एक सूखे रस्ते पर। यानी जब आगे गए और देखा कि आगे समुंदर है, पीछे फ़िरऔन का लश्कर आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि इन्ना लमुद्रकून, मूसा हम तो पकड़े गए। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपनी जो है वो लाठी मारो, तो लाठी मारी गई तो वो समुंदर जो है उस भी फट गया और दो तौदों की तरह खड़ा हो गया और बीच में खुश्क रास्ता निकल आया। ला तखाफ़ु दरकं वला तख्शा, और उनको ना अंदेशा हुआ पकड़े जाने का और ना ही डूबने का कोई डर हुआ। फ़अतबअहुम फ़िरऔनु बिजुनूदिही, तो जब वो गुजर गए तो फ़िरऔन और उसके लश्कर ने उनकी पैरवी की, वो भी आ गए उस खुश्क रस्ते में। फ़ग़शियहुम मिनल यम्मी मा ग़शियहुम, तो जब बनी इसराइल और सैयदना मूसा गुजर गए और दरमियान में थे फ़िरऔन और उसका लश्कर, तो अल्लाह ताला ने दोबारा से जो है वो जो है दोनों तौदों को जमा कर दिया। और फिर क्या हुआ कि फिर उनको ढांप लिया पानी ने, जिस चीज़ ने ढांप लिया, उस अल्लाह का अज़ाब आया और सब डूब गए। वह अदल्ला फ़िरऔनु क़ौमहु वमा हदा, और फ़िरऔन ने बहकाया अपनी कौम को और उनको राह न सुझाई। दुनिया में भी उनको डबो दिया और आखिरत में भी जहन्नुम के घाट पर उनको ले कर उतरेगा। या बनी इसराइल लकद अंजैनाकुम मिन अदुविकुम, ए बनी इसराइल बेशक हमने तुम्हें नजात दी तुम्हारे दुश्मन से, ववअदनाकुम जानिब तूर अलअयमनी वनज़लना अलैकुम अलमन्न वस्सलवा, और हमने तुमसे वादा ठहराया वो जो तूर पहाड़ की दाएं तरफ वहाँ, और हमने तुम्हारे ऊपर मन्नो सलवा नाजिल किया, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें बतौर रिस्क दी हैं उसमें से खाओ, वला तत्गौ फीही, और इस मामले में कोई ज़्यादती न करो, कोई सरकशी न करो। एक तो वैसे उमूमी भी सरकशी न करो, अल्लाह की नेमतें पा के शिरक न करो, कुफ्र न करो, और दूसरा ये कि मन्नो सलवा के मामले में भी सरकशी न करो। एक सरकशी ये है कि हम रोज़ की रोज़ तुम्हें देंगे तो इसको बिला वजह में समेटने की और ज़खीरा करने की कोशिश न करो, और ये भी है कि फिर इसको छोड़ के और चीज़ें ना मांगने लगो। फ़यहिल्लु अलैकुम ग़ज़बी, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मेरा ग़ज़ब तुम पे नाजिल होगा, मैं यहलिल अलैहि ग़ज़बी फ़क़द हवा, और जिस पर मेरा ग़ज़ब उतरा तो वो तो गोया पटख दिया गया, उसको तो गिरा दिया गया जहन्नुम में। वइन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा व आमन व आमिल सालिहन सुम्मा हतदा, और बेशक मैं तो बहुत ही बख्शने वाला हूँ हर उस शख्स को जो रुजू करने वाला है और ईमान लाता है और नेक अमल करता है, सुम्मा हतदा, और फिर सीधी राय अख्तियार करता है। वमा आजलक आन कौमिक या मूसा, अब अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा को बुलाया कोहे तूर पर, ये शौक में अपनी कौम से ज़रा पहले आ गए, जल्दी में पहुँच गए, तो कहा कि ऐ मूसा तुम्हें अपनी कौम से पहले जल्दी आने पर किस चीज़ ने आमादा किया। कालहुम उलाई आला असरी, पहली बात तो ये कही कि अल्लाह वो भी पीछे ही हैं, साथ ही हैं, करीब ही हैं, आ ही रहे हैं। वह अजिल तो इलई का रब्बी लितर्दा, और ऐ रब मैं तेरी तरफ इसलिए जल्दी आया ताकि तुझे राज़ी कर लूँ, यानी मेरा शौक है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। तो कहा कि बस एक शौक है, तुझसे मिलने का इश्तियाक था। काल फ़इन्ना कद फ़तन्ना कौमक मिन बादिक, तो कहा कि फिर बेशक हमने तुम्हारे बाद तुम्हारी कौम को फितने में डाल दिया। वअदल्लहुम सामरी, और सामरी ने उनको बहका दिया। सामरी भी जो है वो बनी इसराइल में से था, और गोया जैसे मुनाफिक था और मुनाफिकीन का सरदार था उनका। फ़रजा मूसा इला कौमी ग़ज़बान असिफ़ा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटे अपनी कौम की तरफ गुस्से में, और बहुत भरे हुए थे वो गुस्से से, तासुफ़ से। काल या कौमी, उन्होंने कहा है मेरी कौम, अलम यईदकुम रब्बुकुम वादन हसना, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था। अफ़ताला अलैकुमुल अहद, क्या बहुत मुद्दत हो गई थी, बहुत लंबी मुद्दत हो गई थी। अम अरदतुम अन यहिल्ला अलैकुम ग़ज़बुम मिन रब्बिकुम, या तुमने ये चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का ग़ज़ब नाजिल हो। फ़अख़लफ़तुम मौईदी, और फिर तुमने मेरे वादे की खिलाफ वर्जी की और अल्लाह की बात को छोड़ दिया और शिर्क इख्तियार कर लिया। कालू मा अख़लफ़ना मौईदा का बिमल्किना, उन्होंने कहा कि हमने तेरे वादे की खिलाफ वर्जी अपने इख्तियार से नहीं की। वला किन्ना हमिलना औज़ारम मिन ज़ीनतिल कौम, बल्कि हमें तो उठवाया गया था जो कौम फिरौन का कि जो जेवरात थे उनका बोझ हमें उठवाया गया था। फ़कज़फ़ नाहा, तो हमने उनको पटक दिया, ज़मीन पर डाल दिया। अब चूँकि ये बनी इसराइल जो थे वो अल्लाह को मानने वाले थे, और अगरचे किबती कौम के साथ उनकी दुश्मनी थी, लेकिन चूँकि ये अमीन लोग थे, सच्चे लोग थे, तो जो आले फिरौन हैं उनकी बहुत सी अमानतें इनके पास थी, जेवरात थे, तो वो जाते वक्त उठा के ले आए, लेकिन गिल्ट भी था उनको कि भाई हम एक उन लोगों का जो है सोना उठा के ले आए हैं, तो एक ख़ास जगह पे जाके वो सारा सोना कौम ने पटक दिया, एक जगह पे गड़े में डाल दिया। तो क्या हुआ कि फ़कज़फ ना हा, तो हमने उसको फेंक दिया। फ़कज़ाली का अलक सामरी, तो उसने सामरी ने उसको उठा लिया और उसको ढाल के उसका एक बछड़ा बना दिया। फ़अख़रज लहुम इजलन जसद लहू ख़ुआर, तो उसने सामरी ने क्या किया कि उसको ढाल के उसमें से एक बछड़ा बना लिया जिसके धड़ में से जैसे एक आवाज़ सी आती थी, और ऐसा उसको बनाया, उसमें ऐसे को सुराख रखे कि जब हवा उसमें से गुजरती थी तो आवाज़ आती थी। फ़कालू हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, तो कहा फिर कि भाई ये तुम्हारा इलाह है और मूसा का इलाह है। फ़नसिया, और मूसा तो लगता है कि भूल गए, यानी उनको भूल गया कि उनका रब वहाँ नहीं है कोहे तूर पर, उनका रब तो ये है। अफला यरौना अल्ला यरजू इलैहिम कौलम वला यमलिकु लहुम दर्रम वला नफा, तो कहा क्या वो गौर नहीं करते थे कि ये जिसको ये कह रहे हैं कि ये रब है, ये बछड़ा है, ये तो उनकी बात का जवाब भी नहीं देता और उनके बारे में किसी फ़ायदे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। वलकद कालहुम हारून मिन क़ब्लु, और इससे पहले हारून भी उनसे कहते रहे, या कौमी, ए मेरी कौम, इन नमा फुतिन तुम भी, कि बेशक तुम्हारी जाँच की गई है, तुम बहक गए हो। व इन रब्बकुमुर रहमान, और बेशक तुम्हारा रब तो रहमान है। फ़त्तबिउनी व अतीउ अमरी, तो देखो मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो। कालू लन नबरहा अलैहि आकिफीन, तो उनकी कौम के जो लोग इन्होंने शिर्क किया था उन्होंने कहा कि हम तो बराबर इसकी तरफ ध्यान लगाए बैठे रहेंगे, हत्ता यर्जिया इलैना मूसा, यहाँ तक कि मूसा ही हमारे पास वापस आए। अब सैयदना मूसा जब आए तो उन्होंने कहा, काल या हारून मा मना का इज़्राइतहुम दल्लू अल्ला तत्तबियान। उन्होंने कहा, ए हारून, तुम्हें किस चीज़ ने रोका था कि जब तुमने इनको देखा कि ये गुमराह हो रहे हैं तो तुम मेरे पीछे आते, यानी या तो मेरी पैरवी करते, मेरी अच्छी खिलाफत यहाँ करते, या चलो मेरे पीछे आके मुझे इतला कर देते कि क्या हुआ है। अफ़ासैत अमरी, क्या तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की। काल यबन ला तख़ुज़ बिलिहयती वला बिरअसी, तो उन्होंने कहा कि ए मेरी माँ, जाए मेरी दाढ़ी और मेरे सर को ना पकड़ो, यानी गज़ब में आकर उन्होंने जो है उनके सर और दाढ़ी की पकड़ से खींचना शुरू कर दिया। इन्नी खशीत अन तकूल फर्रक़्त बैन बनी इसराइल वलम तरकुब कौली, मुझे इसका अंदेशा था कि तुम ये कहोगे कि तुमने फूट डाल दी बनी इसराइल में और मेरी बात याद ना रखी, क्योंकि बनी इसराइल में आपस में जो है सर फुटवल चलता रहता था मुख्तलिफ कबाइल में, वो कह कर गए थे कि देखो इनमें फूट ना पड़े। तो अब ज़ाहिर बात है क्या हुआ कि कुछ लोग शिरक करने लगे, कुछ उनको रोकने लगे, और मैं रोकने वालों में से था, लेकिन अंदेशा इसका था कि भाई ये कौम दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी और खाना जंगी पैदा हो जाएगी और लोग कट मरेंगे यहाँ पर। इससे आमतौर पर हमारे यहाँ कुछ लोग इस्तदलाल करते हैं कि भाई लोगों को नेकी की दावत तो देनी चाहिए, भलाई की दावत देनी चाहिए, लेकिन बुराई से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि बुराई के रोकने से उनकी इस्तलाह के मुताबिक तोड़ पैदा होता है और हम जोड़ चाहते हैं। तो इस लाल में ये आयत भी पेश करते हैं कि असल में इससे तफरीक होती है। तो ये बात मुतलकन ठीक नहीं है। ज़ाहिर बात ठीक है, कुछ जगहों पे हो सकता है कुछ बातों को अगर बयान किया जाए तो उससे ख़राबी पैदा हो, लेकिन कुरान मजीद ने हुक्म अमर बिल मारूफ का भी दिया, नहीं अनिल मुनकर का भी दिया। काल फमा खतबू का या सामरी, तो अब जब कौम से जब मामला हो गया तो अब उन्होंने सामरी की तरफ रुख किया और कहा कि तुम्हारा क्या मामला है, तुम्हारी क्या हकीकत है या सामरी। काल बसूर तो बिमालम यबसरू भी, अब उसने एक बात बनाई, उसने कहा कि मैंने वो देखा जो इन लोगों ने नहीं देखा। फ़कबज़ तो कब्ज़तम मिन असर रसूल, तो जिब्राइल आए थे और जिब्राइल जहाँ उन्होंने पाँव रखा था वहाँ की मिट्टी मैंने ले ली, वहाँ से मुट्ठी भर मैंने मिट्टी ले ली। फ़नबज़ तुहा, और मैंने ये जो सोना ढाला था उसमें डाल दी। व कज़ालिक का सव्वलत ली नफसी, और बस मेरे नफ्स ने मुझे यही सलाह दी कि ये कर लो। अब ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि असल में ऐसा हुआ है कि जिब्रील आए थे तो गोया उनकी जो है पाँव की मट्टी लेकर उसमें डाल दी, तो उससे एक चमत्कार पैदा हो गया, करामत सी पैदा हो गई। लेकिन दूसरी राय जो ज़्यादा बेहतर लगती है वो ये है कि इसने बात बनाई थी, चक्कर दिया था कि भाई मैंने तो असल में जिब्राइल की जो है पाँव की मट्टी से फ़ायदा उठाकर जो है ये समझा कि जैसे इसके ज़रिए कोई चीज़ पैदा हो जाएगी। काल फ़ज़हब फ़इन्न लका फ़िल हयात अन तक़ूल ला मिसास, सैयदना मूसा ने कहा कि अब जाओ दफ़ा हो जाओ, और तुम्हारे लिए ज़िंदगी में तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम लोगों से ये कहोगे कि मुझे छूना मत, यानी ऐसी बीमारी तुम्हें आएगी कि लोग तुमसे दूर रहेंगे और तुम भी किसी से कहोगे कि भाई जो है मेरे करीब ना आना। वइन्न लका मौइदन लन तुखलफा, और तुम्हारा एक वादे का वक्त मुकर्रर है जिसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। वन्दुर इला इलाहिकल्लज़ी ज़ल्ता अलैहि आकिफा, और ज़रा देखो अपने उस माबूद की तरफ जिसकी तरफ तुम एतकाफ लगाए बैठे रहते थे, ध्यान करके मुतकिफ रहते थे। लनुहर्रिकन्नहु, हम ज़रूर भी ज़रूर इसको जला देंगे। सुम्म लनन सिफन नऊ फिल यम्मी नस्फा, और फिर हम बखेर देंगे इसकी खाक को दरिया में उड़ाकर, यानी बात वाज़े हो जाए ताकि कोई जो है उसमें वहम बाकी न रहे कि ये कोई खुदा नहीं है, इसको हम जलाएंगे और जला के इसकी राख समुंदर में उड़ा देंगे। इन नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, बेशक तुम सब का इलाह तो वो है, वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वसिया कुल्ल शैइन इल्मा, और हर चीज़ की समाई उसके इल्म में है, हर चीज़ का इल्म उसे हासिल है। कज़ालिक नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाई मा क़द सबक, इसी तरह हम आपको किस्सा सुनाते हैं उन बातों का, उन चीज़ों का जो आपसे पहले गुजर चुकी है, उनके अहवाल हम आपको सुनाते हैं। वक़द आतैना का मिल लदुन्ना ज़िक्रा, अल्लाह के नबी से ख़िताब है, और बेशक हमने आपको दी है अपने पास से एक याद दहानी, कुरान मजीद आपको दिया है। मन आरज़ान हो, जो कोई भी इस कुरान से हमारी याद से इराज़ करेगा, फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़्रा, तो वो क़ियामत के दिन बोझ उठाएगा। खालिदीन फ़ीहा, और वो रहेगा जहन्नुम में हमेशा हमेशा। वसा लहुम यौमल क़ियामति हिमला, और बहुत ही बुरा है बोझ जो क़ियामत के दिन उसको उठवाया जाएगा। यौम युन्फ़खु फ़िस्सूरि वनहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुर्क़ा, वो दिन के जिस दिन सूर में फूंका जाएगा और हम घेर कर ले आएंगे तमाम गुनहगारों को उस दिन। ज़ुर्क़ा, उनकी आंखें नीली हो रही होंगी, खौफ से उनकी आंखें पथराई हुई नीली होंगी। आज तो जो है बहुत बातें कर रहे हैं, पैगंबर के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, इतरा के गुफ्तगू कर रहे हैं। ये तखाफतून बैनहुम इल्ला बिस्तुम इल्ला आशरा, वो चुपके चुपके आपस में बातें कर रहे होंगे, कि तुम नहीं ठहरे दुनिया में मगर 10 दिन, नहनु आलम बिमा यकूलूना, हम खूब वाकिफ़ हैं जो कुछ वो ये कह रहे हैं। इज यकूल अमसलहुम तरीकतन इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा, कि इनमें सबसे बेहतर आदमी, जो सबसे समझदार आदमी था, जब उसने उनसे कहा कि तुम नहीं ठहरे मगर 1 दिन, वयसअलूनक अनिल जिबाल, और ए नबी ये आपसे पूछते हैं पहाड़ों के बारे में। असल में जब अल्लाह के नबी ने कहा ना कि देखो एक दिन सूर में फूंका जाएगा और हर चीज़ ज़ेरो ज़बर हो जाएगी, सब चीज़ तबाह हो जाएगी, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, तो वो पूछा करते थे अच्छा ये पहाड़ भी, यानी उनके नज़दीक जाहिर बात है सबसे ज़्यादा मुस्तहकम चीज़ और सबसे ज़्यादा ग्रैंडर वाली चीज़ पहाड़ थे। कहते थे आप हर चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी, कहा कि पहाड़ों के बारे में पूछते हैं, ये भी अपनी जगह छोड़ देंगे। फ़कुल यनसिफुहा रब्बी नसफा, तो कहा कि हम अल्लाह आप मेरा रब उनको बखेर देगा और बखेर के उड़ा के रख देगा। इस आखिरी सूरतों में भी है ना कि पहाड़ जो है वो रुई के गालों की तरह, रंगीन गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। फ़ैज़रुहा कान सफ सफ़ा, और फिर वो इस ज़मीन को बिल्कुल चटियल साफ मैदान करके छोड़ देगा। ला तरा फीहा इवजम वला अमता, उसमें तुम कोई मोड़ और कोई टीला नहीं देखोगे। इस ज़मीन के सारे कंटोज, इसके सारे दर्रे, इसके सारे पहाड़ सब बराबर कर दिए जाएंगे। यौमैदिन यत्तबियून अद्दाइया, जिस दिन ये एक पुकारने वाले की पैरवी करेंगे, उसके पीछे दौड़ेंगे। ला इवजला, और जिसकी पुकार में कोई टेढ़ नहीं है, यानी आज हमारे पुकारने वाले की पुकार नहीं सुनते, गर्दनें मटकाते हैं, तकब्बुर करते हैं, उस दिन जब पुकारा जाएगा तो दौड़ते चले आएंगे। वखशातिल अस्वातुल रहमान, और उस दिन रहमान के सामने इनकी आवाज़ें दब जाएंगी, पस्त हो जाएंगी। फ़ला तस्मा इल्ला हमसा, तो तुम नहीं सुनोगे मगर घिसघिसाहट की आवाज़, भिन भिनाहट की आवाज़ आएगी। आज बहुत ऊंची आवाज़ में आर्गुमेंट कर रहे हैं, पैगंबर के मुकाबले में इतरा रहे हैं। यौम ला तनफ़ शफ़ात इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व रज़िय लहु कौला, वो दिन कि जिस दिन कोई शफ़ात फ़ायदा नहीं देगी मगर उसकी शफ़ात होगी जिसको रहमान इजाज़त दे, व रज़िय लहु कौला, और वो भी रहमान के पसंद की बात करेगा। यानी रहमान इजाज़त देगा वो शफ़ात करेगा, जिसके लिए इजाज़त देगा उसके लिए शफ़ात करेगा, और वो बात भी ठीक करेगा। शफ़ात का मतलब नहीं है कि सियाह को सफ़ेद कर दे, मुशरिक को मोमिन बना दे, काफिर को मुसलमान कर दे। यालम मा बैन अईदीहिम वमा खल्फहुम वला युहीतून बिही इल्मा, और अल्लाह जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है, और ये अल्लाह के इल्म में से किसी चीज़ का भी अहाता नहीं कर सकते। वानतिल वुजूहु लिल हय्यिल कय्यूम, और उस दिन चेहरे रगड़ रहे होंगे, पस्त हो जाएंगे उस हस्ती के सामने जो जिंदा है और कय्यूम है, जिंदा है, जिंदा रखे हुए है, कायम है और कायम रखे हुए है। वक़्त ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा, और ख़राबी है उन लोगों की जिन्होंने जुल्म का बोझ उठाया, जिन्होंने शिर्क का बार अपने ऊपर उठाया। मैं यामल मिन सालिहाति वहुव मुमिनुन, इसके बरक्स जो कोई भी नेक आमाल करेगा इस हाल में कि वो मोमिन हो, फ़ला यकाफ़ु ज़ुल्मं वला हज़्मा, तो उसको ना किसी ज़्यादती का अंदेशा होगा और ना किसी हक तलफ़ी का अंदेशा होगा। वकज़ालिका अन्ज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, और इसी तरीके से हमने नाजिल किया इसको क़ुरान अरबी बनाकर। वसर्रफ़ना फ़ीही मिनल वईद, और उसमें हमने हर तरह से जो अपने डराने की बातें हैं फेर फेर कर सुनाई। लअल्लहुम यत्तकून, शायद कि ये डर जाएं, तकवा की रविश इख्तियार करें। अव युहदिसु लहुम ज़िक्रा, या ये कुरान इनके दिल में कोई याद दहानी डाल दे, यानी आला मर्तबा तो ये है कि ये बिल्कुल डर जाएं, लरस जाएं, और कम से कम ये नहीं तो है सोचने पे आमादा कर दे इनको कि हो सकता है मरने के बाद कोई ज़िंदगी हो सकता है कोई पेशी हो। फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक, तो बहुत ही बदतर है वो अल्लाह जो बादशाह हकीकी है। वला ताजल बिल कुरआन, और ए नबी कुरान की बाबत जल्दी न करें। मिन कबली अन युक्दा इलैक वहयु, इससे पहले कि आपकी तरफ इसकी वही का फ़ैसला किया जाए, यानी वही बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि कुरान मजीद आपको ज़्यादा दिया जाए, बार बार दिया जाए। तो कहा कि मिन कबली अन युक्दा इलैक वहयु, इसका उतरना जब तक तय न कर दिया जाए वो अल्लाह की तरफ से है, तो आप जल्दी न करें। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, और ए नबी आप ये दुआ करते रहिए कि ए रब तू मुझे बढ़ा दे इल्म में, यानी मुझे इल्म में बढ़ा दे। अब यहाँ ज़ाहिर बात है लगता ये है कि ज़ाहिर बात है यहाँ जो इज़्दियाद इल्म की दुआ है साफ लगता है कि इसका पहला मतलब क्या है कि वही ज़्यादा नाजिल हो, यानी मुझे बढ़ा दे इल्म में, यानी ए अल्लाह तू बार बार ज़्यादा जल्दी जल्दी मुझ पर कुरान मजीद नाजिल कर। लेकिन वैसे उमूम में है कि ए अल्लाह तू मुझे इल्म में, हिदायत में मुझे बढ़ा दे। اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے سکھایا ہے اس کو میرے لیے نافع بنا دے، ونفعنی بما علمتنی، اور جو کچھ تو مجھے پہلے سکھا چکا ہے اس کو بھی میرے لیے نافع بنا دے، وزدنی علما، اور تو مجھے بڑھا دے علم میں. ولقد عہدنا الی آدم من قبل فنسیا، اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے ایک عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گئے، ولم نجد لہو عزما، اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، ارادے کی پختگی نہیں پائی. یعنی ان سے یہی عہد لیا تھا کہ بھائی اس جنت پہ رہو، جہاں سے چاہو رشتہ پشتہ کھاؤ، لیکن یہ اس درخت کے پاس نہ جانا، لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم کی جو ہے وہ عزم نہیں پایا، ارادے کی پختگی نہیں بنا پائی. اس کے دونوں طرح سے ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بھول کے انہوں نے پھل کھایا تھا، وہ کوئی ارادتاً قصداً پورے عزم کے ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بھول گئے اور ان کے اندر عزم نہیں تھا، ان کے اندر ارادے کی پختگی نہیں تھی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یعنی اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے نا کہ انسان کے اندر گویا یہ دو بلٹ ان کمزوریاں ہیں، اور نسیہ اسی لیے، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ انسان کا جو اشتقاق ہے وہ نسیان سے ہے، کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدم سے جو ہے وہ وعدہ کیا گیا تھا لیکن وہ بھول گئے. تو ایک تو یہ کہ انسان بھول جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں پختگی نہیں ہے ارادے کی. تو اس کو دور کرنے کے لیے دو چیزیں ہمیں دی گئیں، ایک ہمیں دیا گیا قرآن مجید، اسی لیے کہا گیا نا کہ انسان کو یعنی ہر دور میں ہدایت دی گئی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ایک میکانزم دیا وحی کا، کہ وحی تمہیں بار بار یاد دلاتی رہے گی، اور دوسرا میکانزم دیا توبہ کا اور استغفار کا، بھول جاؤ اگر کوشش کرو کہ نہ بھولو، اللہ کے ذکر کو قرآن کو یاد رکھو، اور ٹھیک ہے اگر پاؤں پھسل جائے عزم کی کمی ہو تو پھر توبہ کرو استغفار کرو. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. تو گویا دو انٹرنزک کمزوریاں ہیں، ایک بھول جاتا ہے انسان، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے، اور دوسری بات یہ کہ انسان بہرحال پھسل جاتا ہے، وہ غلطی کر لیتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ کہ توبہ کرے اور استغفار کرے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے ابا، اس نے انکار کیا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ. تو ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم یہ بے شک تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. اور چونکہ ظاہر بات ہے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں وہ راندہ درگاہ ہو گیا تھا، تو اب اس نے کہا کہ میں اب اس سے بدلہ لوں گا، اور خود اگر ڈوبا ہوں تو ان کو بھی ساتھ لے کے ڈوبوں گا. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے اور تم پھر مشقت میں پڑ جاؤ یا نامراد ہو جاؤ. ان نلک اللہ تجو آفیہ ولا تارا. اب جنت میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ یہ ہے کہ نہ تمہیں یہاں پہ بھوک لگے گی اور نہ کوئی اوریانی تمہیں لاحق ہوگی. وہ انک لا تزم اوفیہ ولا تدہا. اور نہ یہاں تمہیں کوئی پیاس ستائے گی اور نہ ہی کوئی دھوپ کی شدت تمہیں آئے گی. فوسوسہ الیہ شیطان. تو شیطان نے ان کے جی میں جو ہے وسوسہ ڈالا. قال یا آدم. اور کہا کہ اے آدم حل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا. کہ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ہمیشگی کے درخت کی طرف اور ایسی بادشاہی کی طرف جو کبھی بوسیدہ نہ ہو، جو کبھی پرانی نہ ہو. اب ظاہر بات آدم کو اس راہ سے چکر دی کہ بھئی اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ اللہ کے جوار میں رہو، اللہ کے قرب میں رہو، ہمیشہ یہاں رہو، تو پھر اس درخت کا پھل کھا لو. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی انسان کی ایک فطری خواہش ہے کہ انسان ایٹرنیٹی چاہتا ہے، اور ظاہر بات ہے وہ ایٹرنیٹی اس دنیا میں اچیو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہا گیا کہ پھر آخرت کے لیے محنت کرو. اسی لیے آپ دیکھیں جدید جو مغرب ہے اس کی چونکہ ایک بڑی تعداد آخرت سے مایوس ہو چکی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ بس یہ دنیا ہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ایک تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لانگیویٹی جس کو کہتے ہیں عمر بڑھائی جائے، اور پھر یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم موت کو شکست دے دیں کسی طریقے سے، ایسا کر لیں، اور اس طرف وہ جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے کسی طریقے سے انسان کے ابھی فی الوقت جو ہے وہ بینک بنا رہے ہیں ایسے کہ جس میں انسان کی جو سٹیم سیل وغیرہ ہیں وہ محفوظ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد جب ایسا وقت آئے کہ ہم انسان پروڈیوس کرنے کے قابل ہوں گے تو انسانوں کو دوبارہ سے پیدا کر دیں گے. اور باقاعدہ جیسے اس کی فیس وغیرہ لی جا رہی ہے، اور باقاعدہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ کوئی فکشن نہیں ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ٹیکنالوجی مل جائے کہ ہم موت کو شکست دے دیں اور دوبارہ سے انسان کو ریپروڈیوس کر سکیں. فاقلا منہا, تو ان دونوں نے کھا لیا اس درخت میں سے. فبدت لہما سوآتہما, تو کیا ہوا کہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں, ان کے پوشیدہ اعضاء ان پہ کھل گئے. وطفقا یکصفان علیہما من ورق الجنہ, اور وہ دونوں فوری طور پر جو ہے اپنی شرمگاہوں پر جنت کے پتے جو ہیں وہ ڈھانپنے لگے. اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ جیسے ہی ان کو برہنگی کا احساس ہوا تو فوری طور پہ حیا ان کے اندر پیدا ہوئی اور انہوں نے ان کو ڈھانپنا چاہا. وعصا آدم ربہ فغوا, اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ سے ہٹ گئے. ثم اجتباہ ربہ, پھر ان کے رب نے ان کو برگزیدہ کیا, نوازا, فتاب علیہ وہدا, اور اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ نے ان کو دوبارہ ہدایت دی. قالہ بتاب منہا جمیان, تو کہا کہ اب تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ. بعضکم لباس عدو, تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں. اگر تو ابلیس بھی ساتھ ہے تو گویا ابلیس اور انسان ان کی آپس کی دشمنی ہے, اور انسانوں کے بارے میں بھی کہا کہ انسانوں کی بھی جو نسلیں آگے چلیں گی ان کے درمیان آپس میں دشمنی ہوگی. فیما یاتینکم منی ہدن, اب وہ میکنزم بتا دیا کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے, فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی, تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی کبھی مشقت میں پڑے گا یا بدبختی اس کا مقدر ہوگی. اب دیکھیں, ایک میکنزم بتا دیا ہدایت کی پیروی, تورات کی, انجیل کی, زبور کی اور قرآن کی, اور دوسری کیا ہے, ومن اعرض عن ذکری, اور جو میری یاد سے غفلت کرے گا. دوسرا میکنزم کیا ہے, اللہ کی یاد اور توبہ اور استغفار. فإن له معيشة ضنكا, تو بے شک اس کے لیے تنگی کی گزران ہے, تنگی کی معیشت ہے. اب اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کی بات نہ مانے, اللہ کے ذکر سے اعراض کرے تو دنیا میں اس کا رزق لازماً تنگ ہو. بعض اوقات الٹا ہوتا ہے, اللہ کی سرکشی کرنا, پیغمبروں کا انکار کرنے والے لوگ بہت مزے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک داخلی بھنچن ہے, کہا کہ وہ سکون میں نہیں ہوتے, وہ اطمینان میں نہیں ہوتے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے, معیشت زنکا کا مطلب یہ ہے کہ جو قبر ہے اس میں ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی, قبر ان پہ تنگ ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب سرکش, کافر اور مجرم جو ہے وہ قبر میں جاتے ہیں تو قبر ان پہ تنگ ہونی شروع ہوتی ہے, اتنی تنگ ہوتی ہے کہ ان کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی. تو ایک مطلب یہ بھی لیا گیا کہ قبر میں جو ان کی گزران ہے وہ بہت تنگ ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور ہم ان سب کو کھڑا کریں گے قیامت کے دن اس حال میں کہ یہ اندھے ہوں گے. قال رب لما حشرتنی اعمى, اس وقت یہ مجرم کہے گا کہ اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, وقت کنت بصیرا, دنیا میں تو میں بینا تھا, یہاں نابینا کیوں اٹھایا. قال کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتھا, کہا کہ اسی طریقے سے تمہارے پاس ہماری آیتیں آئیں تھیں, نشانیاں آئیں تھیں, تم نے ان کو بھلا دیا. وکذالک الیوم تنسا, آج کے دن تمہیں بھلا دیا جائے گا. وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ دنیا میں جو رویہ ان کا ہوگا مانوی طور پر آخرت میں فزیکلی وہ ظاہر ہو جائے گا, اندھے بہرے اور گونگے اٹھائے جائیں گے. وکذالک نجزی من اسرفا, اور یہی اسی طرح کا بدلہ ہے جو ہم دیں گے اس کو جو حد سے نکلا. ولم یؤمن بآیات ربی, اور جس نے اپنے رب کی آیات کا یقین نہ کیا. ولعذاب الآخرت اشد وابقا, اور آخرت کا عذاب بہت شدید بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم, کیا یہ بات ان کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے, ان کو سجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جن کے مسکنوں میں چلتے پھرتے ہیں, یہ سفر کرتے ہیں تجارتی, تو قوم ہود اور قوم صالح اور قوم شعیب کے مساکن اس کے کھنڈرات سے گزرتے ہیں. ان نفی ذالک الآیات لأولی النہا, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى, اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور ان کی ایک مدت متعین نہ ہوتی تو وہ عذاب ان کو چمٹ جاتا. ایک خاص مدت ہے, اللہ رسی دراز کرتا ہے, اگر وہ نہ ہوتی تو عذاب ان کو آ لیتا. فصبر علی ما یقولون, تو اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ صبر کیجئے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس, تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. وقبل غروبها, اور اس کے غروب سے بھی پہلے. ومن آناء اللیل, اور رات کی گھڑیوں میں بھی. فسبح, آپ اس کی تسبیح کیجئے. واطراف النہار, اور دن کی سرحدوں پر, دن کی حدوں پر. لعلک ترضى, شاید کہ تو راضی ہو. یعنی ان چیزوں میں جو ہے, ان اوقات میں, یعنی سورج کے طلوع سے پہلے, غروب سے پہلے, رات کے ایام میں تسبیح کیجئے اور تحمید کیجئے اللہ کی. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا, اور اے نبی آپ اپنی نگاہوں کو مت پھیریے ان لوگوں کی طرف جن کو ہم نے دیا ہے دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان. ان میں سے بہت سے گروہ ہیں جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان دیا ہے. ज़ाहरतल हयात दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी की रौनक है, इसकी तरफ आपकी निगाहें मायल ना हों। ये हमने इनको क्यों दिया है, लिनफ्तिनहुम फी, ताकि हम इनको इस पर जाँचें। व रिस्क रब्बी का खैरू व अबका, और आपके रब का रिस्क तो बेहतर भी है और बाकी रहने वाला भी है। हमने आपको कुरान दिया है, हमने आपको मकाम महमूद दिया है, हमने आपको रिसालत से सरफराज किया है, तो आप इन चीज़ों की तरफ इल्तफात न करें। वहमुर अहल कब सलात वस्तबिर अलैहा, और ए नबी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और ख़ुद भी इस पर साबित कदमी से डटे रहिए। ला नसअलुक रिस्का, हम आपसे रिस्क के खास्तगार नहीं हैं। नहनु नरज़ुकुक, हम ही आपको रिस्क देते हैं। वल आकिबतु लित्तक्वा, और आकिबत जो है वो परहेजगारों के लिए है, मुत्तकीन के लिए है। यानी इसमें यह भी इशारा है ना, इस तरह अहले ईमान से भी बात कही जाती है कि अल्लाह ताला ने रिस्क का ज़िम्मा लिया है और बंदगी का हुक्म दिया है। तो हम उल्टा करते हैं कि हम समझते हैं कि रिस्क हमारे ज़िम्मे है, उसके लिए जो है बहुत भाग दौड़ करते हैं, इतनी भाग दौड़ करते हैं कि अल्लाह की याद को इबादत को भूल जाते हैं। तो जिस चीज़ का अल्लाह ने ज़िम्मा लिया है उसको अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसका हुक्म दिया है उसको भुला देते हैं। वक़ालु लौला यातीना बि आयतिम मिन रब्बी, और वो ये कहते हैं क्यों नहीं आई इनके पास कोई निशानी इनके रब के पास से। अवलम तअतिहिम बैयिनतु मा फिस सुहुफ़ अल-ऊला, क्या नहीं पहुँच गई उनके पास एक वाज़ेह निशानी जिसका तस्करा पुराने सहीफ़ों में मौजूद है। यानी अगली किताबों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद के तस्करे मौजूद हैं और वो कुरान आ गया है। वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन मिन क़ब्लिही, और कहा कि अगर हम उनको इससे पहले ही बग़ैर वही नाज़िल किए रसूल भेजे अपनी तरफ से किसी अज़ाब से हलाक कर देते। लक़ालू, उस वक्त वो ये कहते रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूलन, ए रब क्यों नहीं तूने हमारी तरफ कोई रसूल भेजा। फनत्तबे आयाती का मिन क़ब्लिया नज़िल्ला व नख़्ज़ा, तो हम रसूल अगर आता तो हम तेरी किताब उसकी आयात की पैरवी करते इससे पहले कि हम रुस्वा होते और जलील होते। यानी उस वक्त वो ये कहते कि रसूल क्यों नहीं भेजा और किताब क्यों नहीं उतारी। कुल कुल्लुम मुतरब्बिसुन फतरब्बसु, ए नबी फरमा दीजिए हर एक राह देख रहा है, तुम भी राह देखो, तुम भी इंतज़ार करो। फसतालमून अमन असहाबुस सिरातिस सवी अमन इहतदा, तो अन करीब तुम जान लोगे कि कौन है जो सीधी राह वाले हैं और कौन है जो हिदायत पर हैं। बारकल्लाहु लि व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम।